समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में होंगे मुख्य समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। हेलो अभिषेक।
हेलो आकर्षिता। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट आकर्षिता। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। We begin with the news headlines first. Campaigning in full swing for third and final phase of assembly elections in Jammu and Kashmir and single phase polling in Haryana.
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस साल की शुरुआत में एक बस पर हुए आतंकी हमले के सिलसिले में जम्मू में कई स्थानों पर तलाशी ली।
World Tourism Day has been celebrated today. Vice President Jagdeep Dhankar says tourism creates bonds of humanity and contributes to peace.
उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त।
Shigeru Ishiba set to become the next Prime Minister of Japan. And now, Akarshita, it's time for a segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World Tourism Day. Yes, and Saint Augustine very wisely said, "The world is a book, and those who do not travel read only one page."
यात्रा दर्शनीय स्थलों को देखने से कहीं अधिक है। ये एक परिवर्तन है जो जीवन जीने के विचारों में गहरा और स्थायी होता है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि गोपाल दास ने कहा था कि जितना कम सामान रहेगा सफर उतना ही आसान रहेगा। आज विश्व पर्यटन दिवस है। लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में पर्यटन की भूमिका को दर्शाने के उद्देश्य से हर साल 27 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है पर्यटन और शांति।
Yes, and the theme for this year is tourism and peace. The day also aims to foster a more sustainable and equitable tourism industry for future generations.
ये है हमारा भारत, जहां मौजूद है दिलवालों की दिल्ली। यहां कमल मंदिर की शांति से लेकर चांदनी चौक का शोरगुल है। उसके बराबर में ही मौजूद है उत्तर प्रदेश, जिसके आगरा शहर में मौजूद है 7 अजूबों में से एक ताजमहल। राजस्थान में बसता है गुलाबी शहर जयपुर। अब चले पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग में, जहां मन मोह लेने वाले पहाड़ और खुशबू से महकते चाय के बगान है। फिर आता है धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर, जहाँ की सुंदर वादियाँ, बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ देखकर आप प्रकृति के रंग में रंग जाएंगे। भाग दौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल सुकून के लेने हैं तो बस गोवा चले जाइए। फिर चले जाइए महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जहाँ आपको बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी और मूर्तियां दिखेंगी। भक्ति के रंग में रंगने के लिए जाइए वाराणसी, और जहाँ गंगा की पवित्र आरती सब पर अपना आशीर्वाद बिखेरती है। और दक्षिण में बसे केरल को कैसे भूले, जहाँ होता है पर्वत और समुद्र का संगम। ऐसा है हमारा भारत देश, जहाँ की खूबसूरती को आपकी नजरें देखते हुए थकेंगी नहीं। और अभिषेक, सही बात कहें तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हर तरीके की विविध संस्कृतियाँ एक साथ रहती हैं। और हम देखें कि पर्यटन के अगर हिसाब से देखें तो कितनी सुंदर जगह है ये।
Yes, sir, absolutely. And I always suggest anyone that you should travel as much as possible, not just within the country. And if you have the means and you get the opportunity, you should also travel outside. because travel, you know, really broadens the mind. You know, the more you travel, the more you broaden your mind, and it gives you a very wide perspective of the world around you. So, anyway, moving on, Secretary General of UN World Tourism Organization, Zura Polokashvi, said tourism builds trust and respect, and it drives inclusive growth and safeguards against conflict. And in 2024, Georgia is hosting the World Tourism Day. The country will be showcasing its rich culture, stunning landscapes, and commitment to sustainable practices as the host country. And tourism plays an important role in cultural heritage management, funding and protection. Cultural tourism is an important tourism segment, and visitor spending on entrance tickets, guides and souvenirs contributes to capital needed for the protection of important sites. As a matter of fact, countries with more open and sustainable tourism sector tend to be more peaceful.
पर्यटन परोपकार फैलाता है और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है. और अभिषेक बात करें तो वो कहते हैं ना कि एक कहावत है कि अगर आप करते नहीं कोई यात्रा तो आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अंदर से.
Absolutely, that is what I was just telling a bit while back. And you know, meeting diverse people and experiencing other cultures play a critical role in reducing stereotypes and promoting peace, security and intercultural understanding. Intangible cultural heritage, music, performing arts and oral traditions can also be revived or protected by tourism, isn't it?
Right. और प्रकृति आधारित पर्यटन आज की उच्च मांग है, जो न केवल अदूषित प्रकृति और वन्य जीवन के मूल्य को बढ़ाता है, बल्कि संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले धन को भी उत्पन्न करता है. और अभिषेक बात करें तो आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं विश्व पर्यटन दिवस की, तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी हमारे कंट्री को या अदर कंट्रीज हैं को फायदा पहुंचाता है. कहीं ना कहीं एक तरीके का एक बिजनेस भी बहुत ज्यादा इमर्ज हुआ है एज अ ट्रैवलिंग टूर बिजनेस जो है. और हम देखते हैं कि कई कितने लोगों को ये रोजगार जो है इससे मिलता है ट्रैवलिंग इंडस्ट्री से. और एक तरीके से देखें तो हमें सुकून और शांति तो मिलती ही है. और जितना हो सके हम अपने श्रोताओं से ये निवेदन करते हैं कि वो देश दुनिया का भ्रमण करें, और बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं तो आज अपने आसपास के क्षेत्रों को ही घूमने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ हमारे आसपास ही रह जाता है जिसे हम कभी देखने ही नहीं गए होते हैं.
Absolutely. And let's also talk about sustainable tourism. So what is sustainable tourism? Well, tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communities is called sustainable tourism. And today, Vice President Jagdeep Dhankar has said that tourism creates the bonds of humanity which are most needed at the moment. And addressing a World Tourism Day event in New Delhi today, Mr. Dhankar said tourism contributes massively to peace. He noted that the entire world is yearning for peace. And the Vice President described World Tourism Day as an event to celebrate the profound impact of tourism on global economic development, social progress and cultural exchange. And on the occasion, Mr. Dhankar launched several initiatives of the tourism ministry, including Paryatan Mitra, the best tourism village competition, industry partnership and hospitality chains, a handbook on industry status for tourism and hospitality, and the Incredible India Content Hub.
पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने संबोधन में कहा कि पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच आपसी समझ का एक पुल बनाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि पर्यटन सबको जोड़ने वाला क्षेत्र है. श्री शेखावत ने घोषणा की कि पर्यटन मंत्रालय जल्द ही देश में पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एक मास्टर सूची तैयार करेगा.
Yes, and this day also celebrates the diverse experiences that tourism offers and commits to making travel more inclusive, sustainable and beneficial for all.
विश्व पर्यटन दिवस के लिए अपने संदेश में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि पर्यटन पड़ोसियों के बीच आर्थिक अंतर्निर्भरता को भी बढ़ावा दे सकता है, सहयोग और शांतिपूर्ण विकास को प्रोत्साहित कर सकता है.
Yes, and
आइए हम पर्यटन उद्योग के नायकों को धन्यवाद दें और उनका जश्न मनाएं, जो हमें जो है एक घर जैसा महसूस कराते हैं और हमारी यात्राओं का आनंद लेने में मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं. और अभिषेक, सच कहूं तो यात्रा के बिना जीवन ऐसा लगता है कि बहुत अधूरा है, इसलिए हर किसी को अपने जीवन में यात्राएं करते रहनी चाहिए, जिससे आपको विभिन्न अनुभव मिलेंगे और जिससे आपको बहुत ही अंदर से भी शांति महसूस होगी.
एब्सोल्युटली. सो ऑन दिस वर्ल्ड टूरिज्म डे, may you discover more about yourself with each new place you visit.
Hum chale bahar mein gungunati raahon mein. भी तेज है अब क्या करें, वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिश अनजान है अब क्या करें।
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
Yes, we were talking about the World Tourism Day and still keeping with the World Tourism Day. On the occasion of World Tourism Day, our correspondent visited some heritage sites in Delhi and spoke with some visitors at the Qutub Minar.
Callum, I'm from London. We came here just thinking it was just the minaret, which was enough to draw us here. It's so beautiful. And then we realized when we got here that it's a whole archaeological site that's like 1,000 years old, and it's incredible. Yeah, really beautiful place. So we're very excited to be here.
I'm Devishmita from Kolkata, and I'm here in Delhi for work purpose, basically. Today, I have come to visit Qutub Minar, and till now the experience has been incredible. And I'll encourage people, like really, to come and explore.
बिहार में शराबबंदी के बावजूद पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। पिछले वर्ष लगभग 5.5 लाख विदेशी पर्यटक बिहार आए हैं। वहीं इस वर्ष जुलाई तक के आंकड़ों के अनुसार 2,67,000 से अधिक पर्यटकों का बिहार आगमन हो चुका है। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता से।
बिहार सरकार पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए कई प्रकार के प्रयास कर रही है। इसके तहत छोटे स्तर पर नए पर्यटन स्थलों की पहचान के लिए मेरा प्रखंड मेरा गौरव अभियान 2 अक्टूबर को शुरू किया जाएगा। राज्य के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि इसमें प्रतियोगिता के माध्यम से आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।
दो एक अभिनव प्रयास प्रारंभ कर रहे हैं, एक मेरा प्रखंड मेरा गौरव माई ब्लॉक माई प्राइड, और इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से और जिला प्रशासन के सहयोग से बिहार में हमारी कोशिश है कि हर एक प्रखंड के एक स्थान को हम आने वाले समय में चिन्हित करें और उसको हम सामने लाएं। विभाग का ये एक मानना है कि बिहार की जो बनावट है, बिहार की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है या जो नेचर ने हमको दिया है, उन स्थानों को भी हमको आगे लाना है। तो एक ये प्रतियोगिता हम प्रारंभ करा रहे हैं और आपकी जब 2 तारीख को हमारा ये लॉन्च होता है उसमें भाग लें। साथ ही जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए भी कि बिहार के डिफरेंट लोकेशंस को वो आइडेंटिफाई करें, शूट करें, और उसके लिए भी डिफरेंट श्रेणी बनाई है हम लोगों ने जिसमें हम लोग कैश प्राइजेस भी उनको देंगे।
राज्य सरकार ने पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग और उसे बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मदद लेने का फैसला किया है। इसके अलावा सैलानियों के ठहरने के लिए राज्य में 3 नए 5-स्टार होटल बनेंगे। सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर इन होटलों का निर्माण किया जाएगा। पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की ये पहल पहली बार शुरू की गई है। इसका असर आने वाले समय में दिखने की संभावना है। परिक्रमा के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय।
अभिषेक, जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो हम हरियाली की भी बात करते हैं, पेड़ पौधों की भी बात करते हैं, क्योंकि प्रकृति प्रेमियों के लिए यात्रा प्रकृति से जुड़ने का एक तरीका है, जुड़ने जैसा है। तो एक पेड़ माँ के नाम जो हमारे देश में अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत बहुत ढेर सारे वृक्षों का वृक्षारोपण हो रहा है। तो इसी के तहत एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत देश भर में अब तक 80 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं, जिससे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इस महीने तक 80 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा हो गया है। मंत्रालय ने बताया कि ये लक्ष्य तय सीमा से 5 दिन पहले इस महीने की 25 तारीख को हासिल कर लिया गया। मंत्रालय ने इस सफलता का श्रेय सरकारी एजेंसियों, स्थानीय समुदायों और विभिन्न हितधारकों के प्रयासों को दिया है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पीपल का एक पौधा लगाकर की थी। इस अभियान के तहत लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि अगले वर्ष मार्च तक 140 करोड़ पौधे देश भर में लगाए जाएंगे। महज कुछ ही महीनों के भीतर इस अभियान में पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने को लेकर जो जागरूकता लोगों ने पैदा की है वो अभूतपूर्व है। इस पहल से आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित भविष्य का निर्माण करना भी है। पौधे लगाने के इस महाअभियान में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जहां 26 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। वहीं गुजरात में 15 करोड़ से अधिक, हरियाणा में 12 करोड़, तेलंगाना में 8 करोड़, राजस्थान में 5 करोड़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में 4 करोड़ और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा बिहार में करीब 1.5 करोड़ और महाराष्ट्र में तकरीबन 2 करोड़ पौधे लगाए गए। परिक्रमा के लिए अभिषेक कपिल की रिपोर्ट के साथ प्रिया मौर्य, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
Now we take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
This day in the year 1833, great scholar, reformer, patriot, pioneer, visionary of interfaith harmony and the harbinger of the Indian Renaissance, Raja Ram Mohan Roy breathed his last.
Right from his childhood, he rebelled against superstitions and social customs. He wandered around the Himalayas and went to Tibet. He traveled widely, and the experience gave him a broad outlook. He advocated the study of English, science, Western medicine, and technology.
In 1840, Ram Mohan Roy formed the Atmiya Sabha to initiate social and religious reforms in the society. He campaigned for women's rights, including the right for widows to remarry and the right for women to hold property. He also supported education of women.
In 1828, he founded the Brahmo Samaj, which was one of the first socio-religious reform organizations in the country. It was Raja Ram Mohan Roy who fought for the abolition of gruesome practice of sati, or burning of the widow, on the funeral pyre of the husband.
Ram Mohan Roy was given the title of Raja by the Mughal Emperor Akbar Shah II, who sent him to England to represent him. He went to England in 1833.
10 days after arriving in Bristol, Raja Ram Mohan Roy fell ill with meningitis, and the great social reformer breathed his last on 27th of September, 1833.
On this day in 1873 was born Vitthal Bhai Patel, an acclaimed leader and a humanist. Vitthal Bhai Patel was the elder brother of Sardar Vallabh Bhai Patel.
Born in Nadiad in Gujarat, Vitthal Bhai studied law in London. He became a leading attorney in the courts of Bombay and Ahmedabad.
Vitthal Bhai was instrumental in the passing of two bills in the Bombay Provincial Legislative Council, the Bombay District Municipal Act Amendment Bill and the Town Planning Bill in 1940. He was credited with the extension of primary education to municipal districts in the Bombay Presidency outside of the city of Bombay in 1917.
When Mahatma Gandhi called off the non-cooperation movement in 1922, following the Chauri Chaura incident, Patel left the Congress to form the Swaraj Party with Chittaranjan Das and Motilal Nehru.
He was the first elected president of the Central Legislative Assembly in the year 1925 and was re-elected in 1927. He succeeded in his efforts of creating a separate office for the Legislative Assembly, independent of the Government of India in 1928. It was Vitthal Bhai who established the Convention of Neutrality of the Speaker of the House in debates.
In his later years, Vitthal Bhai travelled in the United States and Europe. Patel's health worsened in Europe and he died in Geneva, Switzerland on 22nd of October, 1933.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल.
In cricket, Bangladesh 107 for 3 in the first innings against India on day 1 of the second and final test match in Kanpur, when stumps were drawn this afternoon due to heavy rain. Earlier, India won the toss and elected to field after intermittent rain and wet outfield delayed the toss.
Macau Open Badminton Championship की महिला डबल्स में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने ताइवान की सू यिन हुई और वू लुओ यू को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है. सेमीफाइनल में कल भारतीय जोड़ी का सामना ताइवान की हसीह पेई शान और हंग एन तुजू की जोड़ी से होगा. इस बीच किदांबी श्रीकांत को पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के एंगस एनजी का लोंग से हार का सामना करना पड़ा।
Yes, and now on to some business news today. Domestic benchmark indices Sensex and Nifty ended lower, snapping the gaining rally achieved in the past sessions. Both the indices had witnessed downfall after surging to fresh all-time highs in the intraday trade today. At close, the Sensex declined 264 points or 0.3% at 85,571, while the Nifty fell 37 points or 0.1% at 26,178.
और अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा या फिर आज के दिन इस दुनिया में कदम रखा। आज महेंद्र कपूर की पुण्यतिथि है। वे हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णकाल की प्रमुख हस्तियों में से एक थे। उनके गाए हुए देशभक्ति गीत लोगों को देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना से भर देते थे। मेरे देश की धरती सोना उगले, भारत का रहने वाला हूँ, अब के बरस तुझे धरती की जैसे गीतों के साथ देशभक्ति गीतों का पर्याय बन गए। महेंद्र कपूर ने अपने चार दशक के फिल्मी सफर में करीब 25,000 गाने गाए।
Yes, महेंद्र कपूर's name, however, became most closely associated with patriotic songs, including मेरे देश की धरती, in मनोज कुमार's film उपकार। He considered Mohammad Rafi as his guru, and in 1972 he was awarded the Padma Shri by the Government of India. He lent his voice to actor Manoj Kumar in most of his films and had lengthy association with director-producer Baldev Raj Chopra.
उनकी प्रतिभा सिर्फ हिंदी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने पंजाबी, मराठी, भोजपुरी आदि क्षेत्रीय भाषाओं के गीत को भी स्वर दिया। आइए सुनते हैं उनके ये गीत।
मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैं प्रीत जहाँ की रीत सदा।
सन ड्वेन माइकल कार्टर जूनियर वाज बोर्न ऑन दिस डे 1982, नोन प्रोफेशनली एज लिल वेन। He is an American rapper. He is regarded as one of the generation's most influential hip-hop artists and is widely considered one of the greatest rappers of all time. Born and raised in New Orleans, he was discovered by hometown rapper Birdman in 1993 and signed with the latest record label Cash Money Records at the age of 11. Let's listen in to his hit track Stunting Like My Daddy and his famous album Like Father, Like Son.
आज भारतीय शास्त्रीय शैली की प्रसिद्ध गायिका शोभा गुर्जर की पुण्यतिथि है। उनका मूल नाम भानुमती शिरोडकर था। वे एक ऐसी शास्त्रीय शिल्पी थी जिन्होंने गायन की ठुमरी शैली को विश्व भर में ख्याति दिलाई। शोभा गुर्जर को ठुमरियों की रानी कहा जाता था। उन्होंने ठुमरी के अतिरिक्त कजरी, होरी और दादरा आदि उपशास्त्रीय शैलियों के अस्तित्व को भी बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1978 में फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की में शोभा जी ने एक ठुमरी सैया रूठ गए मैं मनाऊं कैसे गाई, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।
याद बिया की आए, याद बिया की आए।
शोभा गुर्जर दो वॉज एन इंडियन सिंगर द लाइट हिंदुस्तानी क्लासिकल स्टाइल, दो शेड इक्वल कमांड ओवर प्योर क्लासिकल स्टाइल। शी बिकेम फेमस विद लाइट क्लासिकल म्यूजिक एंड बिकेम नोन एज अ थोरी क्वीन फॉर द अभिनया सन इन अ फुल थ्रोटेड वॉइस। शी वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन 2002। And also Sri Mata Amritananmay Devi was born on this day in 1953. Often known as Amma, Mother, she is an Indian Hindu spiritual leader, guru and humanitarian, revered as the hugging saint by her followers. She is the Chancellor of the Amrita Vishwa Vidyapitham, a multi-campus research university. In 2018, Indian Prime Minister Narendra Modi felicitated her for making the most significant contribution to the government of India's Clean India campaign, Swachh Bharat Mission. She was the first recipient of the Vishwa Ratna Puraskar, Gem of the World Award by the Indian Parliament. And also, Sean Paul Cassidy was born on this day in 1958. He is an American singer, actor, writer and producer. He has created and produced a number of television series, including American Gothic, Roar and Invasion. Cassidy was also an executive producer and writer for the NBC's medical drama, New Amsterdam. Cassidy starred in the ABC television series, The Hardy Boys Mysteries. And also, Avril Lavigne was born on this day in 1984. She is a Canadian singer and songwriter. She is a key musician in developing pop punk music, as she paved the way for female-driven punk-influenced pop music in the early 2000s. Her accolades include 8 Grammy Award nominations. Let's listen in to a hit track, Complicated.
What she yelling for? Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are when we're driving in your car. And
हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध निर्देशक, पटकथा लेखक एवं निर्माता यश चोपड़ा की आज जयंती है. यश चोपड़ा दीवार, कभी कभी, डर चांदनी, सिलसिला, दिल तो पागल है, वीर जारा जैसी अनेकों बेहतरीन और रोमांटिक फिल्में दी है. बतौर निर्देशक यश चोपड़ा की पहली फिल्म धूल का फूल 1949 में प्रदर्शित हुई. 1965 में आई फिल्म वक्त यश चोपड़ा की पहली हिट फिल्म है. भारतीय सिनेमा के प्रमुख स्तंभों में से एक यश चोपड़ा ने 1980 के दशक में यशराज फिल्म्स की स्थापना की और बतौर निर्माता उनकी पहली फिल्म रही राजेश खन्ना अभिनीत सुपरहिट फिल्म दांत. 1975 में फिल्म दीवार प्रदर्शित हुई. यश चोपड़ा को कामयाब निर्देशकों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया और इसके बाद यश चोपड़ा ने अमिताभ के साथ सिलसिला और कभी कभी जैसे कई फिल्मों में काम किया. बतौर निर्देशक 1989 में आई उनकी फिल्म चांदनी हिट रही और 1995 में बतौर निर्माता फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की उन्होंने दाम लगाया. और 2001 में वे फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए और 2005 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया.
Yes, and he's considered among the best Hindi filmmakers and is mainly known and admired for his romantic films and strong female leads. And apart from the Dada Saab Phalke Award and the Padma Bhushan, in 2006, the British Academy of Film and Television Arts gave him a lifetime membership, making him the first Indian to receive the honor. Let's go ahead and listen to a song from one of his movies.
धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला. ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हाँ, ऐसा देश है मेरा. बोले पपीहा कोयल गाए.
Yes, and Francesco Totti was born on this day in 1976. He is a former Italian professional footballer who played solely for Roma and Italian national team. He was a technically gifted and creative offensive playmaker who could play as an attacking midfielder or forward, second striker, lone striker or winger.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और अभिषेक को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की.
नमस्कार.